ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वरीयान श्रेष्ठ वरण करने योग्य एषः यः ते तुम्हारा प्रश्नः प्रश्न कृतः किया गया लोक हितां लोगों का हित करने वाला नृपा हे राजन आत्मविद सम्मतः आत्मज्ञानी लोग ऐसे प्रश्न का बहुत आदर करते हैं। पुंसां जीवों के लिए मनुष्यों के लिए श्रोतव्यादिशो श्रोतव्य आदि के विषय में यह जो परह सर्वोत्कृष्ट महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यत्श्रोतव्यमथो जाप्यं यत्कर्तव्यं निर्भि प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। प्रश्न इस प्रकार से है कि हे योगियों के परम गुरु, मनुष्य जीवन की सफलता किस बात में है? क्या मनुष्य प्राप्त कर ले तो माना जाएगा कि उसने अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त किया? और अब कृपया स्पष्ट बताइए कि मनुष्य को क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और क्या करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए और किसका भजन करना चाहिए। इसके साथ ही ब्रूही जदवा विपर्ययम्, इसके विपरीत भी बताइए क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या याद नहीं करनी चाहिए और किसका भजन नहीं करना चाहिए। तो बहुत स्पष्ट प्रश्न है। महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुनकर सबसे पहले श्रील सुखदेव गोस्वामी उस प्रश्न का अभिनंदन कर रहे हैं। राज्ञः प्रश्नम् अभिनन्दति। गंगा जी के तट पर उन महान ब्रह्मर्षि राजर्षि और देवर्षियों के बीच में श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो सर्वप्रथम अभिनंदन करते हैं। वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः आत्मविद् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिशो यः परः। हे महाराज, मनुष्यों के द्वारा श्रोतव्य आदि के विषय में अर्थात सुनने योग्य, बोलने योग्य या स्मरण करने योग्य, इन सब के विषय में यह परह प्रश्न ते कृता, आपने जो यह जो सुंदर प्रश्न किया है यह वरीयान वरण करने योग्य, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पूछा है। किस विषय में पूछा है? पुंसाम श्रोतव्यादिशु, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य इत्यादि। महाराज परीक्षित ने मनुष्यों के सुनने के विषय में प्रश्न किया, क्या सुनना चाहिए उसे। यहां पर श्रोतव्य आदिशु से तात्पर्य है सुनने योग्य और कीर्तन करने योग्य तथा स्मरण करने योग्य और करने योग्य इंद्रियों से। इनके विषय में जो आपने प्रश्न किया है बहुत बहुत सुंदर है और ये प्रश्न का अनुमोदन हो रहा है। इस प्रकार का योग्य प्रश्न मनुष्य समाज के हित के लिए होता है। महाराज परीक्षित ने जो कुछ भी प्रश्न किया है तो उनके सामने केवल अपना हित ही उद्देश्य नहीं है, वे अन्य सबके हित के लिए प्रश्न कर रहे हैं। आगे भी जो जनता होगी उसके हित के लिए और जो गंगा जी के तट पर बैठे हैं सबके लिए, उसमें हम लोग इंक्लूडेड हैं। लोक हितम, लोक का अर्थ पब्लिक, सर्व सामान्य के हित के लिए, सबके हित के लिए प्रश्न किया जा रहा है। यही है महानता। कोई भी बात की जानी चाहिए तो ध्यान रखना चाहिए कि उसे सबका हित हो, किसी का अहित न हो, सबका कल्याण हो। इस प्रकार की बात पूछनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी स्वयं ही कहते हैं कि ते कृपा प्रश्न लोकहितम, आपके द्वारा पूछे हुए प्रश्न से जगत के लोगों का हित होगा, कल्याण होगा। कभी कभी ये प्रश्न उठ सकता है कि इस प्रकार से भागवत के विषय में प्रश्न करना और सुनना, इससे दुनिया का क्या हित होगा। ऐसा लोग पूछा करते हैं हम लोगों से, कभी कभी लोग पूछते हैं कि आप लोग समाज के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, अपनी गति मुक्ति के लिए राम राम जपते हैं, लेकिन आप लोग लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। हम इसका उत्तर देते हैं कि हम कथा कह रहे हैं या हरे कृष्ण, कथा करते हैं या मंदिर चलाते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, यही तो सबसे बड़ा हित हो रहा है, लोक हित के लिए किया जा रहा है, इसी में जगत का हित। उस भरी सभा में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं लोक हितम, इसी में लोक का हित है। आप लोगों ने सुना होगा कई तरह के वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना होती है, यहां संघ बनाना, ये संघ बनाना, ये संघ बनाना, विश्व में सुख लाने के लिए, लोगों का हित करने के लिए सारा प्रयास हो रहा है। कोई भी दुनिया का एक भी इंस्टीट्यूशन ये नहीं कहता होगा कि हम दुनिया के लोगों को दुख देने के लिए संस्था बनाए, है ना? कोई कहेगा? यहां तक कि टेररिस्ट भी वे ये नहीं कहते हैं कि हम दुनिया को दुख देने के लिए बनाए, हम दुनिया को ठीक करने के लिए, सुख शांति के लिए गुट बनाए, वो भी क्लेम करते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कहता है कि हम विश्व में अशांति पैदा करने के लिए संघ बनाए हैं या ये पंथ अपनाए हैं। सभी यही कह रहे हैं कि हम विश्व शांति के लिए कर रहे हैं, मानव के हित के लिए कर रहे हैं। कभी कभी हमने देखा है हमारे देश में यज्ञ किया जाता है, तो यज्ञ में एक कमिटी बनती है यज्ञ को सफल करने के लिए, और यज्ञ का उद्देश्य लिखा जाता है विश्व शांति के लिए यज्ञ हो रहा है, और यज्ञ का अंत होते होते कमिटी में ही झगड़ा हो जाता है, कमिटी भी शांति प्राप्त नहीं कर पाती है, और विश्व क्या शांति प्राप्त करे, देखा जाता है। तो आखिर प्रश्न तो रह ही जाता है, हित कैसे होगा, विश्व का हित कैसे होगा। तो पहले तो ये पहचानना चाहिए कि हित है क्या, हित क्या चीज है जो होगा या नहीं होगा, वो तो अलग प्रश्न है। मनुष्य का या जीव का हित है कि सर्व दुख विनाश पूर्वक परम सुख की प्राप्ति करा देना, ये उसका हित। तो प्रश्न उठेगा, दुख क्या है, सुख क्या है? तो दुख तो सामने सबको दिखाई दे रहा है, सब दुख है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन है। जन्म लेने में दुख है, मरने में तो महादुख है ही, और जन्म और मृत्यु के बीच में बुढ़ापा और रोगों का दुख है। ये प्रत्येक व्यक्ति का अनुभूत विषय। रोग से कितने लोग बहुत व्याकुल हैं, और कुछ लोग बुढ़ापा के दुख से तंग हैं, और कोई रोग हो या न हो बुढ़ापा ही एक महारोग है अपने आप। ये दो दोष दुख लगे हुए हैं। जीव चाहता है कि हमको सुख मिले, हमको सुख मिले। कैसा सुख है? जो अनंत सुख हो और अनवद्य सुख हो। अनंत सुख का अर्थ है तो चाहता है कि ऐसा सुख जो जिसका कभी अंत न हो, हमेशा कंटिन्यूअस चलता रहे, ऐसा सुख व्यक्ति चाहता है, ऐसा हैप्पीनेस चाहता है, ऐसा सुख चाहता है जिसका एंड न हो, निरंतर हो। प्रत्येक जीव सुख चाहता है, और किस प्रकार का सुख चाहता है? निर्दोष अनवद्य सुख। अवाद्य का अर्थ होता है दोष। दुख में अगर सुख में कुछ दुख मिला हुआ है तो उसको निर्दोष सुख नहीं कहेंगे। दुख के सुख के जो विरुद्ध तत्व है उसको दुख कहते हैं। तो दुख से यदि बटा हुआ, दुख से मिला हुआ सुख है तो उसको पूर्ण सुख या खांटी सुख नहीं कहते। केवल सुख चाहता है जीव, दुख मिला हुआ नहीं। परंतु इस संसार में ऐसा सुख मिल ही नहीं सकता है कि जो सुख अंत न हो, जिस सुख का अंत न हो जाए। अब देखते हैं इस संसार में खाने का या स्पर्श करने का, सुनने का, देखने का सुख है कुछ काल के लिए, लेकिन थोड़े ही देर में आदमी कहता है बस बस बस, अंत हो जाता है। कितना भी खाने वाला व्यक्ति हो और कितना भी स्वादिष्ट पदार्थ बनाइए और उसके बाद सर्विंग कीजिए, दीजिए, वो पेट भरने के बाद कहता बस बस बस, नहीं थोड़ा लीजिए, नहीं नहीं नहीं, नहीं। खत्म हो गया, खाने का सुख खत्म हो गया। बल्कि आदमी देता है तो खाने वाले को बहुत भार महसूस होता है, क्यों दे दिए। कुछ देर तक खाने का सुख मिल रहा था लेकिन भोजन का सुख नष्ट हो, अंत हो जाता है उसका। और भी कोई भी इंद्रिय तृप्ति का सुख है, कुछ देर के बाद देखना अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कभी कभी आदमी अपने मित्र से, अपने प्रिय से बात करता है और पहले बातें अच्छी लगती है, कुछ काल के बाद या एक दो घंटे के बाद वो कहता बस बस जाओ जाओ, अब बात बंद करो, बात मैं सुनना नहीं चाहता, अब अच्छा नहीं लगता। ठीक है ठीक है, तुम जाओ, हो गया हो गया। तो प्रत्येक सुख का अंत इस संसार में है, इसलिए सच्चा सुख नहीं है। और कोई भी सुख है दुख के बिना नहीं है, दुख मिला हुआ है उस सुख में, दुख मिला हुआ है। अब जैसे मान लीजिए आप लोग यहां बहुत अच्छी कार से चलते हैं, लेकिन कार से चलने में भी एक दुख है। जब गैस स्टेशन पर गैस भरवाना होता है तो दुख होता है कि नहीं? ये दुख है। मनुष्य तो सोचेगा कि एक लीटर भरा लेता है और पूरे 200,000 माइल गाड़ी रन करती, उतने में बिल भरना एक दुख है। और उस पर भी और भी अनेक दुख है। उतनी तेज गाड़ी चलती है लेकिन फिर भी ट्रैफिक होल लग गया, धीरे धीरे चलने लगे तो आदमी कार में बैठा बैठा ही मरने लगता है, क्या हो गया। कार के आनंद का अनुभव नहीं कर पाता है उसमें, ये हो जाएगा, देर हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, दुख लगा हुआ है। आप गृहस्थी बनाइए पत्नी बाल बच्चा सबको रखी, लेकिन उनको चलाने में कितना दुख होता है। तो थोड़ा सा सुख है आदमी को, लेकिन अगर 5% सुख है तो 95% दुख है उसे मिला हुआ, और फिर भी मनुष्य थोड़े से सुख के लिए चला रहा है, तो सुख नहीं है। तो अंततः ये प्रश्न हो रहा है कि हित क्या है, और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आपका जो प्रश्न है वो लोक का हित करने के लिए हुआ है। हम इस बार इस कथा को दिल्ली में प्रस्तुत किए थे, तो उसमें बड़े बड़े सांसद लोग आए थे, विधायक भी आए थे दिल्ली के, इस पर चर्चा हो रही थी, सब बैठे थे कथा में। तो उसमें से एक सांसद ने उठ करके अभिनंदन किया कि हम समझते थे कि हम लोग मंत्री हैं और हम लोग लोक हित के लिए काम करते हैं, लेकिन इस प्रकार से भागवत का प्रचार करना यही सबसे बड़ा लोक हित है, ये आज हमारे समझ में आया। नहीं तो वो लोग समझते थे कि साधु भार हैं समाज के, लोग समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं। हमसे एक व्यक्ति ने पूछा कि आप समाज के लिए क्या करते हैं, तो मैं कहा कि ये भागवत कह रहा हूं क्या मच्छरों के लिए, ये समाज के लिए नहीं है, ये समाज का हित ही तो किया जा रहा है ना। और सुखदेव गोस्वामी सभा के बीच में कह रहे हैं कि कृतो लोक हितम निर्भर, इसी से लोक का हित होगा। लोक मतलब लोग, भगवान को जब तक जीव नहीं जानेगा तब तक उसका हित हो ही नहीं सकता है। इसका कारण यह है कि हम लोग स्पिरिचुअल आइडेंटिटी हैं, एंटिटी चित्त कर्ण शास्त्र कहता है, हम लोग स्पिरिट हैं, और श्री कृष्ण होल स्पिरिट हैं, परमात्मा हैं, हम लोग उनके अंश हैं। तो जब तक श्री कृष्ण से हमारा संग नहीं होगा तब तक सुख का कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि जीव का स्वरूप है। श्री प्रहलाद महाराज ने भागवत में कहा है कि हरिर् ही साक्षात भगवान शरीरिणाम आत्मा झसाणाम एव त्वयि निप्सितम्। भगवान हरि श्री कृष्ण जीवों के लिए उतना आवश्यक है जितना जलचरों के लिए जल आवश्यक, मछली के लिए जितना जल आवश्यक। आप देख सकते हैं कि किसी मछली को जल से बाहर करके किसी भी उपाय से उसे सुखी नहीं किया जा सकता है ना। और कोई मूर्खतावश व्यक्ति मछलियों का हित करने के लिए उनको जल से बाहर कर दे, और बाहर आने के बाद अनेक उपाय करे, ऐसे सुखी हो जाए ऐसे सुखी हो जाए, तो मछलियों की हालत बिगड़ती जाएगी। भले हृदय में कितनी भी संवेदना हो मनुष्य के, और अपने समझ से वो मछलियों का हित करना चाहता है, लेकिन कुछ भी करेगा तो उसे मछलियों की दशा बिगड़ती जाएगी, उनका हित नहीं हो सकता है। तो मान लीजिए 10-20 मछलियां जल से बाहर हैं, छटपटा रही हैं पानी के बिना, और 2-4 दयालु पुरुष आवे तो कहें वो भाई इनको सुख देना चाहिए, इनका हित करना चाहिए, जल्दी से जल्दी उपाय करो। तो कोई कहे कि ऐसा काम करो कि कहीं से कोई डॉक्टर बुलाकर इंजेक्शन दो किसी मछली को, इंजेक्शन देने से हो सकता है कि ठीक हो जाए। तो कोई डॉक्टर मूर्खता बस आकर के उस मछली को इंजेक्शन दे तो और तो मारेगा ही ना, उसको पता नहीं है कि जल के बिना तड़फड़ा रही। दूसरा कोई आए कहे कि नहीं नहीं मैं समझ रहा हूं भोजन के बिना मर रही है, इसको जितना अच्छा से अच्छा राइस बासमती राइस का भात ला करके दो, या खीर खिलाओ रसगुल्ला गुलाब जामुन इसको दो, ये खाएगा ठीक हो जाएगा, और खिलाने का प्रयास किया जाए, क्या मछली सुखी हो सकती है उससे? कोई कहे कि ऐसे नहीं ठीक होगा, इसके सामने टीवी ऑन करो, टीवी दिखाओ अनेक प्रकार के शो क्या क्या चैनल बदल बदल कर सुखी हो जाएगा, नहीं नहीं उसकी हालत और बिगड़ती जाएगी। कोई कहे कि इसको एक काम करो कि झूले पर झूला दो ठीक हो जाए, कोई कहे कि इसको वाइवान पर घुमा दो, या सबसे अच्छी गाड़ी पर मतलब कार पर इसको थोड़ा घुमा दो, कुछ भी करेंगे मछली की हालत बिगड़ती जाएगी, क्योंकि उसका स्वरूप है वो जल में ही सुखी हो सकती है। तो और जितने भी उपाय किए जाएंगे वो मछली का नुकसान करेगा, अहित करेगा। एक ही उपाय है मछली को सुखी करने का, कि उसे शुद्ध जल में डाल दिया जाए, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। इसी तरह से हम लोग श्री कृष्ण के अंश हैं, बिना श्री कृष्ण के संग के हम सुखी हो ही नहीं सकते। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हरि ही साक्षात भगवान शरीरण आत्मा झसाणा नियतो निप्सितम। भगवान श्री हरि जीवों के लिए उतने प्रिय हैं जितना मछलियों के लिए जल प्रिय है। जलहीन होकर के मछली सुखी नहीं हो सकती है, इसी तरह कृष्ण से विमुख रह करके हम लोग सुखी नहीं हो सकते। तो जीव का हित कैसे है, किस बात में है, कि जीव को कृष्ण के बारे में बताया जाए और वह कृष्ण से युक्त हो, कृष्ण के पास आ जाए, कृष्ण की सेवा करे, कृष्ण को समझे, कृष्ण का कीर्तन करे, सुने, इससे सुखी होगा। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज, आपका यह प्रश्न लोक हित के लिए, इसी से लोक का हित है बस। अन्यथा सारा समाज और जितनी संस्थाएं हैं सब कुछ करते रहे, संसार का दुख जाने वाला नहीं। संसार का दुख जाएगा भगवान कृष्ण के नाम कीर्तन से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस पर प्रश्न हो सकता है कि सुखदेव जी आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। तो कहते हैं कि आत्मविद सम्मत, जितने भी आत्मज्ञानी हैं, जो भगवत तत्व को और जीव के तत्व को जानते हैं ठीक से, वे लोग ऐसे प्रश्न का बहुत आदर करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने वक्तव्य का प्रमाण उपस्थित करना चाहता है, मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल ठीक है, तो इस पर सुखदेव गोस्वामी सदाचार बता रहे हैं कि जितने भी आत्मज्ञानी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, भगवान के भक्त हैं, वे सब ऐसे प्रश्न का बहुत आदर करते हैं, आत्मविद सम्मत। और दुनिया के प्रश्नों का वो आदर नहीं करते। भगवान के बारे में अगर न पूछा जाए तो ऐसे सब प्रश्न बेकार होते हैं, फालतू प्रश्न होते हैं। देखने में भले लगे कि धार्मिक प्रश्न है, लेकिन वो थर्ड क्लास का होता है। एक बार मैं कथा कह करके बंद किया तो एक व्यक्ति हमसे प्रश्न किया, महाराज जी जो गणेश जी का मस्तक काट दिए थे भगवान शिव, वो मस्तक क्या हुआ, हेड काट दिया गया था उनका, वो क्या हुआ। तुमने कहा कि हमको पता नहीं है, हमको इसका कोई पता नहीं है क्या हुआ। तो कहते नहीं, आप जरा पता लगाइए। तुमने कहा क्या आपको जरूरत है। मैं कह क्या जरूरत है, जाकर पूछिए पार्वती जी कहीं फ्रिज में रखी हैं कि क्या रखी हैं। ये कोई प्रश्न है, क्या जरूरत है वास्तव में ऐसे प्रश्न की। दुनिया तो प्रश्न और उत्तर से भरा हुआ है, चारों तरफ प्रश्न है, उत्तर है, ये है, वो है, नाना प्रकार के ऐसे प्रश्नों से जीवन व्यर्थ जा रहा है। तो आत्मित सम्मत पुंसान, आत्मज्ञानियों के द्वारा इस प्रश्न का बहुत आदर होता है। मतलब ऐसे प्रश्न को सुनते हैं, इसके विषय में उत्तर देते हैं, सुनते हैं, श्रवण कीर्तन कर। जीव का क्या कर्तव्य है, क्या बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या याद करना चाहिए, कितना फर्स्ट क्लास का प्रश्न है। और यह जीवों के हित के लिए प्रश्न है, बहुत आवश्यक। मान लीजिए मछलियां छटपटा रही हैं तट पर कहीं, और उनमें से किसी मछली के मन में यह प्रश्न आए कि क्या उपाय करने से हमारी छटपटाहट जाएगी, और उत्तर देने वाला कोई व्यक्ति जाकर कहे कि जल में गिरने से, जब तुम लोग सरोवर में जाओगी या समुद्र में या नदी में तब सुखी हो पाओगी। तो प्रश्न पूछा जाए, वो समुद्र कहाँ है, कितना दूर है, कैसे जाएंगे, कैसे उसमें गिरेंगे। तो इस तरह से जीव यहां दुख से दग्ध है, तो श्री कृष्ण के विषय में उसे प्रश्न करना चाहिए। ये सारा प्रश्न श्री कृष्ण से संबंधित है। इस प्रकार प्रश्न का अभिनंदन करते हैं, कहते हैं कि पुंसम श्रोतव्याद्यु यह पर। मनुष्य के लिए जो भी सुनने लायक, बोलने लायक, स्मरण करने लायक विषय है, उनमें से तो आपका प्रश्न ही सबसे श्रेष्ठ। ऐसे प्रश्न को सुनना चाहिए, मतलब प्रश्न और प्रश्न के उत्तर में जो वक्तव्य विषय है उसको सुनना चाहिए। इसी में ही थे। इस प्रकार प्रश्न का अभिनंदन करके अब ब्रूही जदवा विपर्ययम्, पहले विपरीत का उत्तर दे रहे हैं तीन श्लोक। वृथा क्रियाकलाप में मनुष्यों की आयु का व्यय होता है, व्यर्थ दिन चला जाता है, यह दिखाते हुए ये बता रहे हैं कि मनुष्य को क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, किसका स्मरण नहीं करना चाहिए। सबसे पहले विपरीत उत्तर देते कहते हैं, श्रोतव्यादि निराजेन्द्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्व गृहेषु गृहमेधिनाम। हे महाराज, जो गृहेषु गृह में आसक्त हैं और इस कारण से गृहमेधी हैं, ऐसे गृहमेधियों के लिए, घर गृहस्थी में जो आसक्त हैं, उनके लिए तो सुनने और कहने की कोटि कोटि चीजें हैं। बहुत व्यर्थ बातें बोलते हैं, बहुत बहुत सुनने की चीज है, सुनने के लिए, बोलने के लिए, देखने के लिए, स्मरण करने के लिए, उनके लिए तो बहुत बहुत विषय है। आप देख रहे कितनी पत्रिकाएं निकलती हैं, कितने बुक्स निकलते हैं, कितने प्रवचन होते हैं, भाषण होते हैं, तो लोग सुन ही रहे हैं, सुन रहे हैं चारों तरफ, बोल रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। तो जो अपश्यताम आत्मतत्व, जो लोग आत्मा को नहीं जानते हैं, भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं पहचानते हैं, उनके लिए तो कहने, सुनने, स्मरण करने के हजारों हजारों विषय हैं, करोड़ों करोड़ों विषय हैं। अपश्यताम आत्मतत्व, अपश्यताम का अर्थ जो नहीं देखते, नहीं समझते, क्या आत्मतत्व, मैं कौन हूं और श्री कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है और उस संबंध के अनुसार हमारा क्या कर्तव्य है, इसको जो नहीं जानते हैं उनको अपश्यताम आत्मतत्व कहा। आत्मा को नहीं जानते, बिल्कुल मूर्ख है, अपने स्वरूप को नहीं जानते, तो उनके लिए तो सुनने कहने आदि की बातें हजारों हजारों है। यहां सहस्रशः का अर्थ अनंत, अनंत प्रकार से लोग सुन रहे हैं। इस संसार में सब देख सकते हैं, कितना लोग देखते हैं, जैसे टीवी देखना हो, स्पोर्ट्स देखते हैं, मैच देखते हैं, और सब देखते हैं, देख रहे हैं, जब से जन्म हुआ है तब से केवल प्राकृतिक पदार्थों को ही देख रहे हैं, अपने को नहीं समझते हैं, भगवान को नहीं समझते, और देख रहे हैं, बोलते भी हैं नाना प्रकार से, संसार का वर्णन करते हैं, सुनते हैं, और मन में अनेक क्रियाओं का, अनेक लोगों का स्मरण होता रहता है, और अनंत अनंत प्रकार से खा रहे हैं, सुन रहे हैं, टच कर रहे हैं। टच के भी अनेक विषय हैं संसार में। मैं एक बार ऐसे स्टोर में गया जहां देखा सोने के लिए अनेक प्रकार के गद्दे का वर्णन किया गया, सजाया गया, आपको हम कंफर्टेबल स्लीप की व्यवस्था करते हैं, ऐसे सोइए, ऐसा बेड है, ये है, वो है। एक जगह तो मैं देखा कि कुत्ता के लिए अलग बेड सब बेच रहे थे, उस पर कुत्ता को बैठा करके और ऐसे उसका फोटो आराम से रखा गया, फोटो दें। पहनने की चीजें है, जूता तो अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार के चप्पल, अनेक प्रकार के जूता, जितने भी सामान स्टोरों में भरे गए हैं, ये सब केवल देह के लिए, आत्मा के लिए कुछ भी नहीं है। यहां वृंदावन में जाइए तो लोही बाजार में पूरा आत्मा के लिए चीजें मिलती है, माला, कंठी, झोली, गोपी चंदन, ये सब आत्मा के लिए आवश्यक चीजें। और ये सब शरीर तक के लिए, शरीर को भी कोई सुख नहीं देती चीज, पर शरीर के सुख के लिए कितनी कितनी चीजें बना रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, बेच रहे हैं और कंज्यूम किया जा रहा है, भोग रहे हैं। सैटरडे संडे को जाइए तो पूरा पार्किंग लॉट भरा रहता है स्टोर रूम, तो शॉपिंग हो रहा है। उन वस्तुओं को बनाने में, ट्रांसपोर्ट करने में, बेचने में सारा समय जा रहा है। खाने की हजारों चीजें हैं, हजारों प्रकार के बोतल, हजारों प्रकार के खाद्य पदार्थ अनावश्यक हैं, कोई जरूरी नहीं। साधारण पानी पी करके और अन्न फल खा करके भी आदमी उतना ही जीता है जितना एक अनेक प्रकार की चीजों का संग्रह करके खा करके जी रहा है आदमी। इससे बहुत चीजें हैं, लेकिन उनके लिए हैं ये जो आत्मा को, भगवान को नहीं जानते। और गृहेषु गृह में दिना, जो गृह में आसक्त, गृह का अर्थ है जो बच्चा में, स्त्री में आसक्त है, मोटा मोटी अर्थ यही। गृह का अर्थ हाउस नहीं होता है। न गृहम गृहम इत्याहुर गृहिणी गृह उच्यते, गृह को गृह नहीं कहते हैं, गृहिणी को गृह कहते हैं संस्कृत में। न गृहम गृहम इत्याहुर गृहिणी गृह उच्यते, गृह का अर्थ होता है जो ग्रहण करे, पकड़ ले, उसको गृह कहते। आप ऐसे भी देखिए कि आदमी दिन भर कहीं काम करे, कहीं जॉब करे, लेकिन शाम को या जब तक घर में आ जाता है, अपने आप घर पकड़ लिया है उसको, वो रहेगा ही, कोई पाबंदी नहीं है कि तुम घर पर जाओगे, जाना ही पड़ेगा, कोई अनुशासन नहीं, वो अपने आप चला जाता। जेल में तो चारों तरफ दीवार रहती है, फाटक रहता है, संतरी रहता है, तब आदमी निकल करके नहीं भागता है, लेकिन अपने घर में, परिवार में कोई ताला नहीं लगा है। जब भी आदमी भाग कर चाहे वृंदावन भाग सकता है, लेकिन क्या मजाल कोई भाग सकता है, न हथकड़ी है, न बेड़ी है, न संतरी है, न कुछ, लेकिन पड़ा हुआ है। इसको कहते हैं गृह, ऐसा पकड़ लिया। बल्कि लाखों उपदेश कीजिए कि भजन करो, फिर भी नहीं होता। इसको गृह कहा गया है। तो गृह में भी गृहिणी ही मुख्य पकड़ने वाली चीज, गृहिणी घर की स्वामी कही जाती है, लेकिन सेंटर जो घर गृहस्थी का है वो है पत्नी, स्त्री। तो इस तरह से जीव पकड़ा गया है और गृहमेधी है। गृहमेधी का अर्थ होता है कि उसे मेधतिर हिंसायाम, उसे पांच जगह पर हिंसा करनी ही पड़ती है। श्रीधर स्वामी जी ने कहा है मेधति का अर्थ होता है हिंसा, जैसे पानी भरने में, झाड़ू देने में, मसाला पीसने में, भोजन बनाने में, पानी, इन सब अवसरों पर उसे हिंसा करनी ही पड़ती है, हिंसा होती रहती है। और उतनी हिंसा भगवान के द्वारा छूट है, क्योंकि जीने के लिए करना ही पड़ेगा उतना हिंसा। जैसे घर में झाड़ू दे रहे हैं तो कुछ कीड़े मर ही जाते हैं, पानी गर्म करेंगे भोजन बनाने के लिए उसमें कई सूक्ष्म कीड़े मर जाते हैं। मसाला पीसना है, धान कूटना है, चावल बनाना है, समय मरते रहते हैं। आप सोचेंगे कि हम तो कूट नहीं रहे, लेकिन जिन लोगों ने कूटा है और जितने जीव मरे हैं, तो उसको खरीदने वाले को शेयर लेना पड़ता है उस हिंसा में, कि समझ लेना चाहिए। बरसात के दिन में रोड पर बहुत से कीड़े आ जाते हैं और मोटे मोटे रबड़ वाले चक्का वाले गाड़ी पर आदमी चढ़ करके चलता है, मान लीजिए बस पर या कार पर, तो सोचता है कि हम किसी जीव की हत्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस के चक्का से जितने जीव मरे हैं उनकी हत्या में उस बस में बैठे हुए पैसेंजरों को शेयर लेना पड़ता है, उनका भाग होता है। जितने जीव मरेंगे तो वो तो भोगना पड़ेगा। आदमी सोचता है कि हम क्या कर रहे हैं इसमें, तो हम तो मार नहीं रहे, तो चौड़ा चक्का चल रहा है और पचपच से वो कीड़े मरते जा रहे हैं, क्या बस आपको छोड़ दिया जाएगा? इसलिए कि कार के ऊपर बैठे हैं, ये सब कर्म के सिद्धांत हैं जो लागू होते हैं, पर कुछ कर्म ऐसे हैं जिनके फल के विषय में भगवान मनुष्यों को बांधते नहीं। जीने के लिए जरूरी घर में झाड़ू देना, पानी भरना, भोजन बनाना, ये सब। लेकिन अब कोई व्यक्ति ऊपर से स्प्रे करके कॉकरोच मारने लगे तब तो लगेगा बंधन। अब इतना अधिकार नहीं है कि किसी को भी मारना चालू कर दो। तो इस तरह से गृहस्थ को गृहमेध ही कहते हैं, जिसे पांच जगह पर हिंसा करनी ही पड़ती है। तो एक तो हिंसा करना पड़ रहा है, दूसरे घर गृहस्थी में आसक्त है, विषय भोग में पड़ा हुआ है, नहीं जानता है अपने जीवन के लक्ष्य को, किस तरह से उसका दिन और रात जीवन का समय बीत जाता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे न वा। नक्तम जद्वयः, जो रात में उसकी उम्र है, 12 घंटे की रात होती है, नक्तम का अर्थ रात्रि, रात्रि कालीन जो उसका वयः उम्र है वो निद्रया ह्रियते, नींद के द्वारा हर लिया जाता है। मनुष्य रात में सोता है तो उस रात्रि में भी उसको उम्र मिली है, आयु मिली है, दिन और रात दो विभाग है। तो रात्रि कालीन जो उसकी उम्र है वो निद्रा के द्वारा हर ली जाती है। निद्रा में पड़े पड़े आदमी कई घंटा बिता देता है, सोए सोए बिता देता है, कुछ नहीं करता है, न तो परिवार के लिए कोई काम करता है और न तो भजन पूजन, कुछ नहीं, बेकार सोता है। सोना जीवन का बिल्कुल व्यर्थ टाइम बिताना है। जितने भी ट्रांसडेंटलिस्ट हुए हैं, बड़े बड़े साधक सिद्ध, वे बहुत कम सोए। श्रील प्रभुपाद बहुत कम सोते थे। भक्ति विनोद ठाकुर केवल 2.5 घंटा सोते थे, ऐसा वर्णन। जय हरे कृष्ण। वे 8 बजे सो जाते थे और 10:30 बजे जग जाते थे, भक्ति विनोद ठाकुर, और ग्रंथ लिखते थे रात भर। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ज्यादा से ज्यादा रात्रि में 1.5 घंटा सोते थे। निद्रा हार विहार काज विजितव, जीत चुके थे, बहुत कम सोते थे 1.5 घंटा। और किसी किसी दिन नाम संकीर्तन का ऐसा आवेश होता था कि 1 मिनट भी नहीं सोते थे। नाम संकीर्तन कभी न है कि दिन है, ऐसे ऐसे सोते थे। अर्ध याम लिखा गया, अर्ध याम 3 घंटे का 1 याम होता है, तो 1.5 घंटे का 1 अर्ध याम हुआ, तो 1.5 घंटा सोते थे कभी, और कभी कभी वो भी नहीं। इस तरह कम सोते थे। और भोजन, भोजन बहुत कम करते थे, निद्रा बहुत कम और भोजन बहुत कम। निद्रा हार विहार काद विजित, उसको जीत लिए थे। 24 घंटे में 1 बार सूखी रोटी या चना चबा लेते थे, शुष्क रोटी चना चिबाए भोग परिहरी, भोग कभी नहीं खाए, कभी अच्छा पदार्थ नहीं। तो इस तरह से उन लोगों ने काम कितना किया, वृंदावन में रह करके, रूखा सूखा खा करके, जग करके, उस ब्रज की धूली में, कुंज के बीच में रहकर कितना बड़ा काम किया। भक्ति रसामृत सिंधु जैसा दिव्य ग्रंथ दिया, भागवत पर टीका लिखे, बृहद भागवतामृत लिखे, दान के लिए कौमुदी लिखे, अनेक प्रकार की किताबें श्री रूप गोस्वामी पाद ने लिखी। उतने अभाव में रह करके जगत को बहुत दिया। आजकल के लोग तो समाज से इतना ज्यादा ले रहे हैं पर आउटपुट तो नील है, कुछ भी नहीं दे रहे है ना। इनपुट बहुत है, इनपुट को ये ब्रेकफास्ट चाहिए, लंच चाहिए, डिनर चाहिए, इतना खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, काम कुछ नहीं करते। क्या संसार को दिए, क्या दिए, जो रूप गोस्वामी पाद ने दिया या प्रभुपाद जी ने दिया है, सब जगत को बहुत दिया। वे लोग भी संसार का कुछ खाए, बहुत कम खाए। एक बार भारतवर्ष के एक संत विनोबा जी ने कहा था, बहुत अच्छी बात कहा था, कि किसी भी मनुष्य को चाहिए कि समाज से कम ले और अधिक से अधिक दे। हम समाज में हैं तो कपड़ा पहनेंगे, खाएंगे, घर में रहेंगे, लेकिन कम से कम लेना चाहिए और समाज को ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। तब उसको संत कहते, उन्होंने कहा था। और अब जो जितना ही छोटा आदमी होता है, संत नहीं है, खल है, तो वो समाज से जितना ही ज्यादा से ज्यादा लेता है और देता बहुत कम, बल्कि नहीं देता, केवल खाओ खाओ खाओ, समाज का हित नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो इस तरह से निद्रा जो है वो जीवन का एक व्यर्थ टाइम है। तो नींद में लोगों की आयु बीत जाती है, जो इंद्रियों के परतंत्र मनुष्य हैं बहुत सोते हैं। यदि मान लीजिए कोई 24 घंटे में 8 घंटा सोया और कदाचित तो 90 साल जिए, तो 30 साल तक तो अखंड सोया ही रहा ना। यदि सारे स्लीपिंग आवर्स को कंबाइंड किया जाए, 1/3 तो सो करके बिताया। अच्छा, 60 वर्ष जगा, तो जगने में फिर ये काम वो काम, खाओ पियो ये करो, उसमें कहां माला जप आगे कहां की। 1/3 आयु इस तरह से बिता दिया। कुछ लोग सोते हैं, 8 घंटा से कम नहीं सोते, इधर रात को जगते हैं तो उधर 10 बजे 9 बजे कोई कोई लोग सोते हैं, वहां तक सोते हैं। तो 8 घंटा तो मान ही लीजिए, इस तरह से बेकार आदमी जीवन का समय बिताता है। तो इस तरह से निद्रा के द्वारा ये आयु हर ली जाता है। और व्यवायन चवा वय, अथवा रात का समय दो काम में बिताया जाता है, एक तो निद्रा में अथवा व्यवाय में, स्त्री प्रसंग में। अगर कोई व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति जगता भी है तो ऐसा नहीं करता है कि माला उठाकर कुछ जप करे, या तो टीवी देखने में जगेगा, या स्त्री से बातचीत करने में, और बस सिनेमा देखने में, इसी में खत्म हो जाए। कुछ लोग रात को जगे हुए देखे जाते हैं, इधर के शहरों में तो न्यूयॉर्क में या बड़े बड़े शहरों में देखेंगे रात को भी लोग जगे हुए हैं, लेकिन जग कर क्या कर रहे हैं, वहां कोई कीर्तन अखंड थोड़े चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। जगे, व्यवाय का अर्थ होता है स्त्री संग, जगते हैं रात में तो स्त्री संग में। तो इस तरह से स्त्री संग में और निद्रा में रात समाप्त हो जाती। यह प्रश्न होगा कि श्रील सुखदेव गोस्वामी यह क्यों कह रहे हैं कि स्त्री संग में ही भी व्यक्ति जगता है। वास्तव में और जो भी काम है, टीवी देखना या सिनेमा देखना या और कुछ काम करना, ये सब स्त्री प्रसंग। जब रात हो चाहे दिन हो, कोई व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है, भागवत पढ़ रहा है, जप कर रहा है, तब माना जाएगा कि हाँ वो ठीक है, उसका समय ठीक जा रहा है। तो रात्रि कालीन समय ऐसे चला जाता है। दिवाचार थे है आराजन कुटुम्ब भरणे न। और दिन का जो उसका उम्र है वो कैसे जाता है, अर्थे हया, अर्थ या पैसा के लिए काम करने में, जॉब करने में, ये वो दौड़ने जाने आने में, काम करने में समय चला, पैसा कमाने में, दिन का समय पैसा कमाने में चला जाता है। अथवा सैटरडे और संडे को कुटुंब भरने वा, शॉपिंग में चला जाता है, ये खरीदो ये करो ये करो, पिकनिक में जाओ पार्टी में जाओ, सैटरडे संडे वैसे खत्म, और बाकी दिन गधे की तरह काम करो, इसी में जा रहा है दिन। तो अर्थे हया कुटुंब भरणे न वा, किसी किसी को देखा भी जाता है, अगर सैटरडे को संडे को छुट्टी हुई है तो उस दिन कुटुंब का भरण करता है, किसको क्या लाना है, किसको क्या लाना है, ये सफाई करो, ये करो, वो करो, वो करो, गया। तो सैटरडे संडे ऐसे चला जाता है, और फिर हाय रे मंडे आ जाता है। कुछ लोगों के लिए तो बहुत दुखद काल। वीकेंड बहुत अच्छा लगता है और वीकडेज बहुत बुरा लगता है। आदमी चाहता नहीं है इस तरह परिश्रम करना, लेकिन क्या करें, करना ही पड़ता है। 8-8 घंटे परिश्रम किया, और आने जाने में जो देख ही रहे हैं ट्रैफिक, ये कोई जीवन है रोड पर चलना, कार में चलना, ये कोई जीवन नहीं है वास्तव में, लेकिन मनुष्य इस तरह से फंसा हुआ है। कितने लोगों का तो लगता है कि 3-4 घंटा रोज रोड पर बीत जाता हो, है ना? हाँ, ये कोई जीवन नहीं है इस तरह से। अच्छा, वो अभी चलो रोड पर बीत रहा है, तो मंदिर आने के लिए अगर बीता में 1-8 घंटा तो वो भी एक सार्थक हो जाए। लेकिन डाउन टाउन जाने में बिताते, तो जो भी हो इधर उधर भागो, उधर हर 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 हर, कुछ फुर्सत भी मिली दिन में तो जा करके लेक के किनारे सनशाइन ले रहे हैं, इस तरह से बिना मतलब। एक बार मैं देखा कुछ लोग ऐसे लेटे हुए थे नग में, केवल कौफीन पहने हुए, चड्डी पहने हुए, धूप में, तो मैं ये क्या कर रहे हैं, अपने को रेड बनाना चाहते हैं। शरीर गोरा है तो उसको थोड़ा लाल में अरुण वर्ण का बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं, और कोई लज्जा नहीं। स्त्री भी वहीं लेटी है, पुरुष भी लेटे हैं सब। अगर लेक है तो उसको भगवान की विभूति मान करके वहां पर जा करके अगर जप करते बैठ करके, कितना बड़ा जीवन का लाभ मिलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो दिन का समय पैसा कमाने में और कुटुंब के भरण में बीत जाता है, और रात्रि का समय नींद में और स्त्री प्रसंग में बीत जाता है, इस तरह से बीत जाता है। पर एक प्रश्न होता है कि मनुष्य यह कैसे नहीं देख पाता है कि शरीर नश्वर है, परिवार नश्वर है, फिर भी परिवार के पालन आदि में ही क्यों लगा रहता है। देखता है कि शरीर नष्ट हो रहा है, नश्वर का अर्थ होता है प्रति क्षण जो नाश को प्राप्त हो, धीरे धीरे नाश के तरफ जाए, उसको नश्वर कहते हैं। अपना ही चेहरा आदमी देखे, अपना सब कुछ देखे तो समझ जाएगा कि अरे तो शरीर नाश की तरफ जा रहा प्रतिक्षण। तो शरीर नश्वर है, पत्नी अनित्य है, बच्चा अनित्य है, संबंधी सब अनित्य है, छूटते जा रहे हैं, फिर भी क्यों इतना आसक्त है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो पश्चिम नपी न पड़ सके, देखता हुए देखता ही नहीं है। देहा पत्य कलत्रा दिशु आत्मसैन्य असत्स्वपी तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्य। मनुष्य देखता है, क्या क्या देखता है, देह अपत्य कलत्रा दिशु, देह पुत्र स्त्री, ये जो जीव की सेना के समान है, वो मानता है कि इस संसार के भोग भोगने में हमारी मदद करते हैं। मनुष्य संसार में सोचता है कि बेटा हमारा साथ दे रहा है संसार को बेहतर भोगने में, स्त्री साथ दे रही है और देह साथ दे रहा है, देह संसार को भोगने का सबसे मूल साधन है, और इसके साथ और सब असिस्टेंट हेल्प कर रहे हैं हमको कि हम जरा बेहतर भोग सके। इनको आत्म सैन्येषु कहा गया, ये आत्मा के सैनिक हैं, अर्थात जीव के सैनिक हैं, इसको हेल्प करते हैं। लेकिन वो देखता है कि जो हमको हेल्प करने वाले थे तेषां प्रमत्त निधनम, उनका निधन देखता है, लेकिन इतना प्रमत्त रहता है कि पश्य नपि न पश्यति, देखता हुआ भी नहीं देखता। देखता है ये हमारे चारों तरफ लोग मर रहे हैं, न्यूज पेपर में भी पढ़ता है, टीवी में भी देखता है, और आगे पीछे अपने परिवार में भी कई लोगों का मरण शरण देखा, या तलाक देखा, डिवोर्स देखा, सब देखा, लेकिन फिर भी पागल पश्चिम न पी न पश्चिम कुछ नहीं देख पाता, देखता हुआ भी नहीं देखता। श्रीमद भागवत के पंचम स्कंध में एक श्लोक है जिसमें भद्र सर्वा जी भगवान हयग्रीव से कहते हैं कि बदंत विश्वम कवियम स्मनस्वरम पश्यंत चाध्यात्म विदो विपश्चित मुह्यंत तवा माया सुविस्मितम कृत मजो नतोस्मितम। बड़े बड़े विद्वान इस संसार को कहते हैं कि नश्वर है, और अध्यात्म में आगे बढ़े हुए लोग तो देखते भी हैं कि नश्वर है, फिर भी माया में फंस जाते हैं। आपकी माया की अद्भुत शक्ति, देखते हैं, जानिया सुनिया विष खाएंगे। देखने का अर्थ है कि कोई मान लीजिए जहर रखा हुआ है बोतल पर, बोतल में, और उस पर लिखा है लेबल प्वाइजन लिखा है, और दो चार आदमी बाहर से भी निकट में भी कहते हैं कि प्वाइजन है, प्वाइजन है, लेकिन हाय रे उठा करके पी, देखते हैं, जानिया सुनिया विष खाए। मनुष जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाए, जान गया कि विष है, और दूसरे लोग सुना भी रहे थे फिर भी खा लिए। हरि हरि विफल जन्म गवान, ये दशा है मनुष्य। वास्तव में भगवान की माया अद्भुत प्रसन्न है, अद्भुत शक्तिशाली। और एक श्लोक में भद्र सर्वा जी कहते हैं, तो अद्भुत बात कहते हैं कि मनुष्य देखता है कि हमारे पिताजी मर गए, चले गए, और यह भी देखता है कि हमसे जन्मा हुआ व्यक्ति बच्चा भी मर गया, आगे जन्म लेने वाला भी मर गया, बाद में हमसे जो जन्म लिया वो भी मर गया। कभी कभी ऐसा होता है अपने पुत्र को ही लेकर के श्मशान में जाना पड़ता है, परंतु उस समय भी व्यक्ति असत का ध्यान करता रहा, ध्यायन असत जर विकर्म से निर्हित पुत्रम पितरम जिजी विशति। अद्भुत आपकी माया है प्रभु, कि व्यक्ति अपने पिता का निर्हार करके, दाह संस्कार करके, अपने पुत्र का दाह संस्कार करके बीच में स्वयं जीना चाहता है, वो ये नहीं देखता है कि मैं भी मर जाऊंगा, बल्कि वह आनंद मनाता है कि पुत्र कुछ छोड़ दिया है सामान तो उसको भोगने लगता है, और पिता छोड़कर के गया है तो उसको तो भोगता ही, उसको बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है कि अगली बार मेरी बारी है। ठीक तरह से शास्त्र कहता है बलि का बकरा या कसाई जो बकरे का मांस बेचता है, तो वह बकरों को सजा करके रखता है एक जगह पर, देखा गया, और जैसे जैसे ग्राहक आते हैं काट काट करके बेचता जाता है। खास करके काली जी की पूजा करने वाले लोग भी ऐसे देखे जाते हैं, तो बकरा चढ़ाते हैं काली जी को, बलि देते हैं, तो कुछ बकरे बंधे रहते हैं, तो उन बकरों को क्या करता है वो वर्षी पर कि लाल कपड़ा ओढ़ा देता है, स्वागत करता है इनका, तो वस्त्र समर्पित करता है, तिलक देता है, माला पहनाता है, और कुछ पुआ या चना डाल देता है, खाता रहता है, घास डाल देता है। और वो बकरा ये नहीं देखता है कि दो मिनट के बाद ही मेरे मस्तक पर तलवार चलने वाला है, कुछ नहीं जानता, और खाने में लगा रहता है, वो खाता है पीता है, इस तरह से उसकी दशा रहती है, और अपना आसन्न संकट नहीं देख पाता, यही दशा मनुष्यों की। अच्छा बकरा तो बेचारा कुछ पढ़ता नहीं है, देखता नहीं, वो तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये तो न्यूज़पेपर में ही पढ़ता है, बकरा न्यूज़पेपर में पढ़ता है इधर इतने लोग मारेगा, इतने इराक में मारेगा, तो उतना उधर मारेगा, तो उधर ये मारेगा, इधर दुर्घटना में मर गए, उधर बम ब्लास्ट में मर गए, उधर ये हो गए, हार्ट अटैक में वो मर गए, वो हो गए, वो हो गए, लेकिन पश्चिमती न पश्चिम देखता हुआ भी नहीं देख पाता। ये भगवान की प्रबल माया। एक बार महाराज युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा किमाश्चर्यम, आश्चर्य क्या है, उसने 100 प्रश्न किया था युधिष्ठिर महाराज, आश्चर्य क्या है। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं अहन्य हन्य भूतानी गच्छन्ति जम्हालयम् शेषा स्थावरम इच्छन्ति किमाश्चर्य मतः पर। प्रतिदिन प्रतिक्षण मिनट मिनट सेकेंड सेकेंड जीव जमराज के घर जा रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन शेषा जो बचे हुए हैं वे स्थावरम इच्छन्ति, वो अपनी अचल स्थिति चाहते हैं। किमाश्चर्य मतः पर, इससे बढ़कर क्या आश्चर्य हो सकता है। चारों तरफ लोग मर ही रहे हैं तो तुम कैसे अचल रह जाओगे भाई, तुम्हारा शरीर कोई बहुत फौलाद का बना हुआ है क्या है? अन्य सबका जैसे शरीर था वैसे ही शरीर है, और मर ही रहे हैं लोग, संग छूट ही रहा है, फिर भी लोग आश्चर्य है कि स्थावरम इच्छन्ति, स्थिति चाहते हैं हम यहीं रहें यहीं रहें यहीं रहें यहीं रहें, हम मरे ना कुछ भी हो जाए ना मरे। आदमी क्या क्या हार्ट का ऑपरेशन करवा करवा करके जैसे तैसे जीना चाहता, मरना चाहता नहीं, लेकिन कुछ भी हो मरना तो पड़ेगा। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी विपर्यय का वर्णन कर रहे हैं, किस तरह से जीव फंसा हुआ है इस संसार में। अब असली प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए। तब कहते हैं पॉजिटिव उत्तर, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम् अभयम् इच्छता। हे महाराज परीक्षित, जो व्यक्ति अभय चाहता है, मुक्ति चाहता है, जन्म मृत्यु से छूटना चाहता है, उस व्यक्ति के द्वारा भगवान हरि ही श्रोतव्य है, कीर्तितव्य है, स्मर्तव्य है। यदि वास्तव में कोई चाहता है संसार बंधन से छूटना, दुख से मुक्त होना, तो उसे चाहिए कि भगवान कृष्ण का श्रवण करे, कीर्तन करे, वर्णन करे, स्मरण करे। यहां पर भगवान विष्णु के लिए या श्रीकृष्ण के लिए चार विशेषण बताया गया है इस प्रश्न में, इस श्लोक में सब कुछ आ गया है। किसका भजन करना चाहिए? हरि का, जिन्हें ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं और सर्वात्मा कहते हैं। भगवान के चार नाम दिए गए हैं यहां, उनका भजन करना चाहिए, उनके विषय में सुनना चाहिए। इसको हम लोग क्लियर कह सकते हैं, हरि के विषय में सुनना चाहिए, हरि के विषय में कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तो सबसे पहले सर्वात्मा, सर्वात्मा का अर्थ है परम प्रिय। सिद्धेश्वर जी अर्थ कर, जितने भी जीव हैं इस संसार में उनके वास्तविक प्रीति के विषय प्रेमास्पद भगवान श्री कृष्ण हैं, विष्णु हैं। जीव उन्हीं को खोज रहा है किसी भी योनि में। भगवान सभी जीवों के परम प्रिय हैं, भले ज्ञान हो या न हो जीव को, लेकिन वही प्रिय है, उन्हीं को खोज रहा है वो किसी भी योनि में, क्योंकि वो सर्वात्मा है। वैसे किसी शरीर में आप देखिए, जब तक चेतन शक्ति रहती है, आत्मा रहता है, तभी तक व्यक्ति प्रेम करता है। और वो आत्मा है क्या? भगवान श्री कृष्ण का एक अंश है, ममई वंश जीव लोक जीव भूत सनातन। कोई व्यक्ति जब तक जीवित है, चाहे वो पति है, चाहे पत्नी है, चाहे पुत्र है, मित्र है, जब तक जीवित है तभी तक प्रिय लगता है ना। जीवित रहने पर आदमी कहता है मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरा भाई है, मेरा पिता है, चाहे ये है वो है, लेकिन जीव ही आत्मा शरीर को छोड़ करके चला जाता है, अब वो मरा हुआ शरीर प्रिय नहीं लगता है ना। शरीर प्रिय नहीं लगता, कितना भी प्रिय शरीर पहले से हो, लेकिन क्या मरे हुए शरीर को कोई रखेगा? पता नहीं कुछ लोग पिरामिड में रखे हैं, क्या किए हैं वो लोग, तो ऐसे अज्ञानी लोग जो भी हो, लेकिन यहां तो कोई नहीं रखना चाहता है, कोई भी व्यक्ति, चाहे जमीन के अंदर दफनावे, चाहे जलावे, चाहे पानी में डाले, शरीर डाल दिया जाता है। कोई नहीं कह सकता मैं ये शरीर बहुत मुझे प्रिय था, मैं तो इसको रखूंगा। क्या रखोगे? दो दिन में ही सड़ जाएगा, नहीं रख सकता। तो शरीर प्रिय नहीं है ना, ये सिद्धांत स्थापित हुआ। तो उस शरीर के भीतर रह करके जो बोल रहा था, सुन रहा था, वो प्रिय है। और वह है क्या? वह श्री कृष्ण का एक अंश है। तो अंततः तो श्री कृष्ण ही प्रिय हुए ना, अंततः तो जीव श्री कृष्ण से ही प्रेम कर रहा है, क्योंकि उनका अंश जब तक शरीर में रहा तब तक प्रेम रहा, अपने अंश को उन्होंने खींच लिया, जैसे सूर्य अपने किरणों को समेट ले तो अंधकार छा जाता है। तो शरीर में जो भी सुख है या सुंदरता है देखने में लग रहा है, वो तो आत्मा की उपस्थिति के कारण है। और सभी शरीरों में भगवान श्री कृष्ण ही आत्मा है। तस्मात् भारत सर्व आत्मा, यहां कह रहे सुखदेव गोस्वामी। आखिर जीव उन्हीं से प्रेम कर ही रहा है इनडायरेक्ट में, तो डायरेक्ट उन्हीं का श्रवण कीर्तन क्यों न करे? कृष्ण सभी के परम आत्मा है, सभी आत्माएं उन पर आधारित है, उनके अंश है, इसीलिए श्री कृष्ण को परम आत्मा कहते हैं। आत्मा ही परमो हरि, श्री कृष्ण परम आत्मा। तो आत्मा के बिना कहीं कोई सुख नहीं है, कहीं कोई चेतना नहीं है, ज्ञान नहीं है, उत्सव नहीं है, कुछ नहीं है। और श्री कृष्ण सर्वात्मा है। ऐसा नहीं कि मेरी ही आत्मा है, आपकी ही आत्मा है, वो जड़ चेतन सभी पदार्थों में वे आत्मा है, भगवान आत्मा है। और उनके कारण को किसी शरीर में चेतना है या ज्ञान है, समझ है। यदि शरीर में चेतना न रहे तो क्या ज्ञान, क्या प्रोफेसर, क्या राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर, सबको कब्र में डाल दिया तो क्या बिना चेतना को क्या होगा? तो कृष्ण प्रिय है, एक तो यह बात है कि किसका भजन करना चाहिए, जो जीवों का वास्तविक प्रिय है, जीवों का जो वास्तविक संबंधी है उसका भजन करना चाहिए, और वो है हरि, भगवान कृष्ण। सिद्धांत बताया जा रहा है, प्रश्न है किसका भजन करना चाहिए। तो एक तो यह विशेषता है सर्वात्मा भगवान, और भगवान का अर्थ है इति सौंदर्यम। सिद्धार्थ स्वामी जी लिखते हैं भग का अर्थ ऐश्वर्य, जो छह भग से, छह ऐश्वर्य से युक्त है, छह ऐश्वर्य में एक ऐश्वर्य है सौंदर्य। भगवान परम सुंदर हैं, परम सुंदर हैं। यहां भगवान शब्द से व्यक्त किया जा रहा है, कृष्ण परम सुंदर। देखा जाता है कि संसार में कोई व्यक्ति सुंदर व्यक्ति से प्रेम करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं जिसका आश्रय लूं, जिसका भजन करूं, वो सुंदर हो और नित्य हो। यह भग है, भगवान नित्य हैं और परम सुंदर, परम कृपालु। भगवान शब्द से कहा किसका भजन करना चाहिए? हरि का, जो भगवान है। और यह संबंध और सौंदर्य भगवान का नित्य रहेगा, नित्य। इस संसार में तो किसी मनुष्य में सुंदरता होती है, दो चार साल के लिए समाप्त हो जाती है। और संबंध भी समाप्त हो जाता है। तो श्री कृष्ण सदा रहेंगे और सदा एक रस स्थिति में रहेंगे, और अपने प्रेमियों के साथ भगवान का जो भाव है वो कभी नहीं बदलेगा। जो प्रेम है, प्रेम रहेगा, और श्री कृष्ण की सुंदरता रहेगी, भक्तों के प्रति उनका प्रेम रहेगा, और संबंध नित्य रहेगा, क्योंकि श्री कृष्ण पर काल का कोई असर नहीं है, वे वृद्ध हो नहीं सकते। अगर भगवान के साथ किसी स्त्री का संबंध होता है मातृभाव से और कृष्ण को मां कृष्ण को अपना पुत्र मानती है तो अनंत काल तक वह माता ही रहेगी और श्री कृष्ण उसके पुत्र रहेंगे। ये भगवान का संबंध है। इस संसार में तो माता और पुत्र का संबंध भी थोड़े ही काल के बाद विदा हो जाता है। यह शरीर जब तक है तब तक है, इसके बाद पता नहीं कौन कहां गया और उसकी कौन मां बनेगी, कहां कोई ठीक नहीं रहता। नित्य संबंध भगवान के साथ जो जीव का संबंध है वो नित्य है, इसीलिए उन्हीं का भजन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में एक प्रसंग में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण जब कुरुक्षेत्र से लौटे द्वारका तो उस समय लगभग 100 वर्ष की उम्र थी भगवान की। प्रकट लीला में 90 वर्ष से ऊपर के थे। 90 वर्ष के ऊपर का व्यक्ति ये लौटा है अपने घर में जिसकी 16,000 पत्नियां हैं, तो सबसे पहले भगवान अपनी माताओं के घर में गए। इनकी बहुत सी माताएं थी, तो स्वयं देवकी जी 7 बहन थी और भी माताएं थी। तो भगवान प्रवेश करते हैं माताओं के घर में, तो जितनी माताएं थी उतने रूप से प्रवेश किया। और वर्णन किया गया है कि माताएं इनको अपने गोद में लेकर के और दूध पिलाने लगे, अस्तन से दूध चू रहा था। स्पष्ट शुद्ध गोस्वामी वर्णन करते हैं, आंखों से आंसू और अस्तन से दूध चू रहा था और भगवान बिल्कुल गोद में बैठ गए थे। जब 90 साल तक किसी माता का दूध रहेगा स्तन में, और जब तक बच्चा भात रोटी नहीं खाता है तभी तक दूध रहता है ना, जब कड़ा चीज खाने लगता है तो भगवान ने दूध भी खत्म कर देते, वो थोड़े काल के लिए ये रहता है। लेकिन श्री कृष्ण के साथ यदि कोई माता पुत्र का भाव करे तो हमेशा पुत्रवती रहेगी, भगवान कभी समाप्त होने वाले हैं नहीं, अनंत काल तक मां रहेगी, सदा के लिए मां रहेगी और भगवान पुत्र रहेंगे। अगर किसी के मित्र बनते हैं तो सदा मित्र रहेंगे, भगवान का भाव बदल नहीं सकता। अगर वे पिता हैं किसी के तो सदा पिता रहेंगे, पिता तो सबके है ही बस। तो सदा इस संबंध स्थापित किया जाता है। कोई भाग्यवती स्त्री यदि भगवान को अपना पति मानती है तो सदा सुहागिन रहेगी, अनंत काल तक श्री कृष्ण उसके पति रहेंगे। तो जो वास्तव में जीवों के संबंधी हैं, परम सुंदर हैं और जिनका मनोभाव जिनका प्रेम जीवों के प्रति नित्य रहता है, उन्हीं का भजन करना चाहिए। जो लोग यह कह देते हैं कि किसी भी देवता का भजन करो, किसी को भी इष्ट देव मानो, वास्तव में पागल है, वो समझते नहीं क्या कोई करेगा। जीव के वास्तविक बंधु वास्तविक प्रिय प्रीति के विषय श्री कृष्ण है। तीसरी विशेषता बता रहे हैं ईश्वर, वे नियंता। अंततः श्रीकृष्ण के अधीन ही जीव को रहना है, ऐसे भी अंततः उनका कमांड रहेगा। ऐसा नहीं है कि भगवान हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि मेरा भजन करो, नहीं, भजन करने पर फिर खैरियत नहीं है, यह भी है क्योंकि जमराज आदि उन्हीं के दास हैं, नहीं भजन करने वालों की बहुत अच्छी मरम्मत कर देते हैं। श्री कृष्ण ईश्वर हैं, जीवों का जन्म मरण भोग यह लोक परलोक सब कुछ श्री कृष्ण के हाथ में है, वे ईश्वर हैं। ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर। इस संसार में मनुष्य जिससे प्रेम करना चाहता है हो सकता है वो ईश्वर ना हो, कोई मान लीजिए घर का मालिक है, चाहे देश का मालिक है, स्टेट का मालिक है, कितने दिन तक, 5 साल तक, फिर चुनाव हुआ दूसरा, क्या कोई ईश्वर कमांडर इन चीफ ऐसे लिखते हैं ना, कमांडर इन चीफ है और कुछ ही काल के बाद उसको कोई रोग कमांड करने करेगा, वो क्या कमांड कर पाएगा, कुछ नहीं कर सकता, किसी की स्थिति ठीक नहीं है। सदा से ईश्वर है श्री कृष्ण, कमांड है ब्रह्मा जी पर, शिव जी पर, जमराज जी पर, सूर्य पर, चंद्रमा पर, मयाध्यक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, हेत नाने न कौनते जगत भी परिवर्तते, सब कुछ भगवान के अधीन है। तो जब अंततः उनके अधीन ही रहना है तो क्यों नहीं अनुकूल भाव से उनके अधीन रहें, अधीन रहना ही है। अरे कोई श्रीकृष्ण से बाहर हो जाता, उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता तो माना जाता चलो नहीं, अंततः तो उनके अधीन ही रहना है। कब शरीर जाएगा, कब शरीर दूसरा मिलेगा, क्या खाने को मिलेगा, क्या पहनने को मिलेगा, कब मित्र मिलेंगे, माँ मिलेगी, पिता मिलेंगे, भाई मिलेंगे, सब कुछ कृष्ण के हाथ में है। इसीलिए ऐसे सर्वसमर्थ श्रीकृष्ण का भजन करना चाहिए, इनके विषय में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए। और चौथा गुण बता रहे हैं भगवान का, हरि। हरि का अर्थ इति बंध हरित्व, श्रीधर स्वामी जी कहते जो बंधन हर लेते हैं, जीव का दुख हर लेंगे, कर्मबंधन हर लेते हैं, उनको हरि कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है हरि शब्द अनेकार्थ, दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। वैसे तो हरि शब्द के बहुत अर्थ हैं, लेकिन दो मुख्य अर्थ है, ये है सर्व अमंगल हरे, अपने भक्त के शरणागत के सभी दुख को भगवान हर लेते हैं। हरति इति हरि, जो हर ले उसको हरि कर, सारा दुख हर लेते हैं भगवान, सारा अमंगल दूर कर देते हैं। जो हम लोग स्वस्ति वाचन श्लोक में पढ़ते हैं, ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतो पिवाह यह स्मरेत पुंडरी काक्षम स बाह्याभ्यंतरो सुचिहि। जो व्यक्ति अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, जो कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का विष्णु का वह स्मरण करता है तो भीतर बाहर सब ओर से पवित्र हो जाता है, भगवान का स्मरण करने से। इस तरह पाप नष्ट कर देते, जैसे सूर्य लोगों के नेत्रों का अंधकार नष्ट कर देता है, वैसे भगवान श्री कृष्ण पाप अमंगल कर्मबंधन सब कुछ हर लेते हैं। कितने से? केवल नाम उच्चारण करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने भगवान मंगलमय हैं, उनके नाम का कोई श्रवण कर ले, कीर्तन कर ले तो उसका सारा अमंगल नष्ट हो जाता। और फिर प्रणाम करे, दर्शन करे, भगवान की कथा सुने, तब कितना पवित्र होगा। जेन केन प्रकारण से, कैसे भी नामाभास से भी किसी का संबंध हो जाता है तो भगवान श्रीकृष्ण उसका अमंगल हर लेते हैं। केवल सामने आ जाने से, उनका स्वभाव है भगवान का, स्वभाव है कि बंधन हरेगा। जैसे सूर्य के सामने कोई आवे तो आंखों का अंधकार जाएगा, ये स्वभाव है। अग्नि के पास जाएगा तो शीत दूर हो जाएगा, ठंडा दूर हो जाएगा, स्वभाव है भगवान। उनका कोई नाम लेता है, उनको प्रणाम करता है, चिंतन करता है, उनके पास आता है तो उसका अमंगल नष्ट हो जाता है। जैसे पूतना, पूतना बहुत बुरे हृदय से आई थी भगवान के पास, बहुत बुरा कलेजा। श्री कृष्ण को अपना स्तन पिलाकर, अपने स्तन में लगे हुए हलाहल विष पिला करके उनको मारने के लिए आई, उसकी कोई भी नियत हो, लेकिन भगवान तो भगवान है। भगवान के पास आते ही भगवान ने उसे अपनी मातृ गति दिया। जशोदा जी को जो सौभाग्य प्राप्त है, वह सौभाग्य पूतना को भगवान ने दिया। ये भगवान का स्वभाव है, वो अमंगल दूर होगा ही होगा ही, इसीलिए उनको हरि कहते। अमंगल दूर हो ही जाएगा केवल अभिमुख गमन से। भगवान ने पूतना के डार्क साइड को देखा ही नहीं, केवल उन्होंने यही देखा कि ये गोपी का ड्रेस पहनकर आई बस, और हमारे ब्रज में आई, इतना ही देख, हमारे पास आई। तो बेचारी चाहे जैसे पहले का हो, दुष्कर्मी हो, बेचारी अज्ञानी है, कुछ भी है, मैं तो अज्ञानी नहीं हूं ना। जो भगवान की महानता है, चाहे बुरा नियत से आई, चाहे कुछ भी आई, लेकिन मैं बुरा नहीं हूं ना। तो अपने गुण से भगवान उसका हित कर ही दिए, स्वाभाविक, उसको वस्तु शक्ति कहते हैं। भगवान ये सब विचार करते ही नहीं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पाप से मुक्त कर दूंगा। इसको कहते हैं हरि, जीव के अमंगल को हर लेते हैं, दुख को हर लेते हैं। अजामिल बेचारा इतना पाप किया था, अंतिम समय में अपने पुत्र के स्नेह में उसने नारायण शब्द बोला, लेकिन भगवान का नाम इतना महामंगलमय है कि उसका कल्याण हुआ। जमराज के दुख चले गए, जमपाश काट दिया गया, और बाद में भजन करके भगवान का धाम प्राप्त किया। जिसके नाम की, जिसके कथा की, जिसके प्रसाद की ये सब इतनी महिमा है, वही प्रभु भजनीय है, उन्हीं का भजन करना चाहिए। और कोई भजनीय नहीं है वास्तव में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो देवताओं के विषय में कहा है कि देवता तो ऐसे हैं सब कि जाही जल जाचो कहे अमी ए पियाउस। अगर देवताओं से मांगिए कि हमको जल चाहिए, कुछ जल दीजिए, तो वो कहेंगे हमको अमृत ला करके दो तब देंगे। तो जब हमको अमृत ही प्राप्त होता तो हम आपसे क्यों प्रार्थना करते। तो हमको पानी दीजिए, पानी दीजिए, तो कहते अमृत ला करके दो तब देंगे। ये देवताओं का हिसाब। या देवताओं को आप बेल फल के बराबर देंगे कुछ है, तो वे सरसों के बराबर देंगे आपको। ये हिसाब है। ये बिना पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। वे कहते हैं कि हे राम, आपको छोड़कर मैं कहां जाऊं, कोई किसी से मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। जीवों के वास्तविक बंधु भगवान है, वे सब तरह से परिपूर्ण है। वो केवल दुख दूर करना जानते हैं, जीवों को सुखी करना जानते हैं। उन पर अपना कोई दुख नहीं है कि वे जीवों से सोचे कि हमको कुछ हेल्प करे। आपने सुना होगा लोक में लोग कहते हैं किसी देवता से, हे अमुक देवता, यदि हमारा ये काम आप कर देंगे तो हम आपको इतना मिठाई खिला दें। और देखिए बहुत सस्ता देवता पा गए। इतना जब काम करेंगे तब हम आपको ये करेंगे वो करेंगे। जो कुछ भी देवताओं को देखा गया कि बेचारे अभाव में हैं, ये हैं, वो भी भगवान के भक्त हैं, तो भजनीय नहीं है। भजनीय तो विष्णु है, कृष्ण है, अमंगल दूर करते हैं। और जैसा हरि शब्द के द्वारा और भी ध्वनित है, प्रेम दिया हरे मन, श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि उनको देखने पर चित्त में आकर्षण हो जाता है, प्रेम हो जाता है, और प्रेम से मन हर लेते हैं। सर्व अमंगल हर लेते हैं, नेत्र हर लेते हैं, मन हर लेते हैं। श्रीमद् भागवत के अंत में सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण को एक उलाहना देते हैं, कहते हैं कि वो भगवान आए इस संसार में, प्रकट हुए, लेकिन जब गए तो सबके आंखों को छीन कर चले गए। ऐसा वर्णन करते हैं, आंखों को छीन करके चले गए, मतलब जो लोग उनको देखे वे अब दुनिया में और किसी को नहीं देखना चाहते थे। इतना भगवान सुंदर, किसी को देखना ही नहीं चाहते थे। जो एक बार कृष्ण को देखा फिर किसी को देखना नहीं चाहता। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान जब अंतरहित हुए, गोलोक गए, तो सबके आंखों को छीन कर चले। ये भगवान के सौंदर्य का वर्णन। सारा अमंगल हर लेते हैं और प्रेम देकर के मन हर लेते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण भजनीय है। महाराज परीक्षित ने पूछा है कि किसका भजन किया जाए, किसके बारे में श्रवण कीर्तन किया जाए। इसका उत्तर इस श्लोक में है कि तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भवति। यदि वास्तव में कोई अभय चाहता है, दुख से मुक्त होना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह भगवान कृष्ण का श्रवण करे, कथा सुने, कृष्ण का जप करे, पद गावे, निरंतर आवृत्ति करे, और कृष्ण की सेवा करे, कृष्ण में मन लगावे, और कृष्ण को ही संतुष्ट करने की सोचे। भजनीय का एक अर्थ है, भजनीय का अर्थ होता है आराध्य। किसको खुश करने की चेष्टा करे जीव, जिसको खुश करने से जीव का परम हित होगा उसको खुश करे, और क्या, दूसरे को खुश करके होगा क्या। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी को प्लीज करना चाहता है, जीव का स्वभाव है। प्रभुपाद जी इस विषय पर बहुत बोले, किसी न किसी को खुश करना चाहता है। इसलिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे सवेरे सवेरे कुछ लोग कुत्ता लेकर के घूमना चालू करते हैं, तो वो कुत्ते को प्रसन्न करना चाहते हैं। बेचारा सफोकेशन में रात भर रहा है, थोड़ा खुली हवा में टहलेगा तो फ्रेश हो जाएगा। और मान लीजिए कुत्ते को प्रसन्न करना चाहते हैं और कुत्ता 100% प्रसन्न हो भी जाए तो उसका क्या होगा? जो प्रसन्न कर रहा है उसका वो करेगा क्या? किसी तरह से मान लीजिए आजकल के किसी मशीन से देखा जाए कि कुत्ता बिल्कुल प्रसन्न है, हैप्पी है, तो जो उसको हैप्पी बनाया है, जो उसकी पूजा किया है, उसका वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा करेगा थोड़ा चाटेगा, तो चाटने से रोग होता है। कुत्ता अगर चाटता है तो एक उकवत कुष्ठ रोग होता है, ऐसा लोक में हमने सुना। और काट दे तो विष ही चढ़ जाता है। तो कुत्ता को खुश करके करेगा क्या आदमी? इसी तरह से मान लीजिए कोई लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है, राजनेता है, उसको खुश करके क्या करेगा? जन्म मरण मिटा देगा वो, जन्म मृत्यु से कोई पार होगा। कोई कोई लोग अपने स्त्री की आराधना में लगे रहते हैं, वो सोचते हैं बस यह खुश रहेगी तो बस हमारा संसार बिल्कुल उजागर है, मती लगी रहती है कि हमारी वाइफ खुश रहे किसी तरह से, हमारा बेटा खुश रहे, हमारा कुत्ता खुश रहे, या कोई और हायर सुपीरियर शक्ति देवता खुश रहे। खुश हो भी जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा? अरे खुश तो करना है जगन्नाथ जी को, उनकी खुशी होगी तो सब कुछ निहाल कर देंगे, है ना? ऐसे तो ऐसे ही वो कर ही रहे हैं, उनको कोई अपेक्षा नहीं है कि उनको कोई प्रसन्न करे, वो सब तरह से परिपूर्ण है। लेकिन जीव अगर उनके संपर्क में आता है तो उसका बंधन कटता है, उसका हित होता है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भगवान हरि का भजन करना चाहिए, वही सर्वात्मा है, ईश्वर है, भगवान। बहुत सुंदर सिद्धांत का वर्णन कर रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। भक्तों को चाहिए कि इन श्लोकों पर विचार करें। आज के युग में बहुत विपथ का प्रचार है, कुत्सित पथ का प्रचार है। कुछ भी कोई कह देता है, तुम जो भी मानो ठीक है, कुछ भी करो। अगर आज कोई पूछे किसका भजन किया जाए, जहां मन लगे वहां करो, सब एक ही है, सभी रास्ता एक ही जगह जाता है, कोई भेद नहीं है। सभी रास्ता कैसे एक ही जगह जाता है? किसी व्यक्ति को मान लीजिए यहां से मिलवाकी जाना हो या कहीं आसपास जाना, और किसी से कोई पूछे कैसे जाएंगे, कोई भी एक झीट पकड़ लो चले जाओगे, सभी एक ही जगह जाते हैं। अब बताइए सभी एक ही जगह कैसे जाते हैं? कोई भी एक झीट पकड़ो, कोई कहे कि हम यहां से जाना चाहते हैं डेनवर सिटी, और कोई बता दे, कोई भी पकड़ो और पकड़ ले, वो टोरंटो चले जाए, कोई भी रास्ता कैसे चला जाता है भाई? कहीं जाने के लिए रास्ता निश्चित है ना कि ये जाएगा ये जाएगा ये जाएगा। तो आजकल एक फैशन हो गया है, और मूर्ख लोग साधारण पब्लिक इसको उदार मानते हैं। कोई अगर कहे कि हाँ हाँ सभी रास्ता एक ही जगह जाते हैं, तुम कोई भी रास्ता पकड़ो सब ठीक है, तो उसको समझते हैं कि ये रियलाइज्ड सोल है, ये ठीक बोल रहा है। जबकि वो बोका है, वो स्वयं भी रास्ते नहीं जानता है और लीड कर रहा है गलत, लेकिन उसको समझते हैं कि ये बड़े लिबरल हैं, ये किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, बहुत अच्छे महात्मा। तो ऐसे ही रास्ता पूछिए कहीं, और कोई कह दे नहीं, कोई भी एग्जिट पकड़ो, कोई रास्ता पकड़ो, वहीं जाओगे जहां जाना है तुमको, ये तो गलत है ना। सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा गया है, किसका भजन किया जाए, किसका स्मरण किया जाए, किसका कीर्तन किया जाए, किसकी कथा सुनी जाए, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान की कथा, हरि की कथा, सर्वात्मा की कथा, ईश्वर की कथा। क्लियर वर्णन कर रहे हैं। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत की कथा में कोई संदेह नहीं है। तो हमें इसके बाद आगे रोशन करें, कुछ लिंक बदल रहा है। एतावन संख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठ है, इसको कल व्यक्त करेंगे। हरे कृष्ण।